अब शुरू करेंगे हम सूरत कसस को। 88 आयात है इसमें, तरतीब के साथ 28 सूरह पहुंच गई। कसस किस्से को कहते हैं। ये क्या है सूरह कसस, इसका दूसरा नाम लिख लें बायोग्राफी ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सूरह ताहा में भी हम पढ़ के आए हैं, लेकिन इधर आपको फील होगा ख़ास तौर पे वही जैसे अल्लाह के नबी का मक्की दौर, मदनी दौर। आइए देखते हैं, मक्की सूरत है, 88 यानी 88 आयात है और 9 रुकू हैं इसमें। और इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का तफसीली किस्सा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून का किस्सा है, बातिल हक के मानने वालों को फ़िरकों और धड़ों में तकसीम करके उनकी ताकत तोड़ता है, यानी हक को तोड़ता है बातिल ताकि वो सामने आए, और हमने ये होने नहीं देना इंशाल्लाह। मरकज़ी मज़मून इसका है इस बाते रिसालत, यानी नबी सल्लम की रिसालत को साबित करने के लिए पिछले अंबिया की कहानियाँ और उनके किस्से हैं। खूबसूरत सिंपल सूरत है, रवां तर्जुमे के साथ भी बहुत कुछ सीख लेंगे हम इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीमीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन नतलु अलैका मिन नबई मूसा व फिरऔन बिल हक्की लिकौमी युमिनून। सूरत का चौथा रुकू है, पारे का ये पहला रुकू है, आयत 1 से 13। अल्लाह ही दिलों को मजबूत करता है। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को इतना मजबूत कर दे कि हम नहीं को है में बदल लें और उसर को युसर में बदल दे। आज के बाद आपने ये नहीं कहना कि हमारे हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, दुनिया के हालात ख़राब हैं। नेवर एंड नेवर से दिस। आप तो पहले ही कह लीजिए कि इतने टूट गए हैं तो आपकी तो इम्यूनिटी चली गई, बिल्कुल इम्यूनिटी लूज़ हो जाती है ऐसे बंदों की। और ऐसे लोगों में रहा भी ना करें जो नेगेटिव बातें करते रहें, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आइए देखते हैं, तो सीन मीम ये आयतें हैं रोशन किताब की। हम आपके सामने मूसा और फिरौन का सही वाकया बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। यकीनन फिरौन ने ज़मीन में सरकशी कर रखी थी और वहाँ के लोगों को गिरोह गिरोह बना रखा था। हाईलाइट कर लें, डिवाइड एंड रूल, फिरके फिरके बना दो और हर फिरका लड़ता रहे दूसरे से, और हुक्मरान जो दिल चाहे करें, पॉलिसीज बनाए, माल इधर से उधर खुर्द-वुर्द करें, कोई उनको ना देखे। ये फिरौनियत थी उस दौर की। और इनमें से एक फिरके को कमज़ोर कर रखा था और इनके लोगों को तो ज़िबा कर डालता था और इनकी लड़कियों को छोड़ देता था, बेशक वो था ही मुफसिदों में से। फिर हमारी चाहत हुई कि हम इन पर करम फरमाएं जिन्हें ज़मीन में बेहद कमज़ोर कर दिया गया था, यानी उस दौर के मुसलमान बनी इसराइली, और हम इन्हीं को पेशवा और ज़मीन का वारिस बनाएं, और ये भी कि हम इन्हें ज़मीन में कुदरत और इख्तियार दें और फिरौन और हमान और इनके लश्करों को वो दिखाएं जिससे वो डर रहे थे, यानी जिस बच्चे को मारने के लिए फिरौन ने इतने बच्चे मरवा दिए। अल्लाह उस बच्चे को फिरौन के ही महल में ला रहा है। जुमला लिखिएगा, वो अल्लाह ही क्या जो फिरौन से डर जाए। और हमारे यहाँ एक मारूफ मुहावरा है, होता वही है जिसका डर है। कैसे बोलते हैं, वही हुआ जिसका डर था। ये जुमला आप पढ़कर आए हैं आयत नंबर 6 में कि अल्लाह ने फिरौन के सामने वही खड़ा कर दिया जिसका उसको डर था। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे और जब तुझे इसकी निस्बत को खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना और कोई डर खौफ या रंज न करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। आखिरकार फिरौन के लोगों ने इस बच्चे को उठा लिया कि आखिरकार यही बच्चा इनका दुश्मन हो और इनके रंज का बाइस बना। कुछ शक नहीं कि फिरौन और हामान और इनके लश्कर थे ही खताकार। और फिरौन की बीवी ने कहा, ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना कर। बहुत मुमकिन है कि यह हमें कोई फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे अपना ही बेटा बना लें। और ये लोग शऊर भी नहीं रखते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल बेकरार हो गया, हर गम से फारिग, बस बच्चे का गम है। और न्यू बॉर्न बेबी की माँ कैसी होती है उसको जहन में लाइए ज़रा। करीब थी कि इस वाक़े को बिल्कुल जाहिर कर देती, अगर हम इनके दिल को ढारस न दे देते, ये इसलिए कि वो यकीन करने वालों में रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उसकी बहन से कहा कि तू इसके पीछे पीछे जा, तो वो इसे दूर ही दूर से देखती रही और फिरौनियों को इसका इल्म ना हुआ। इनके पहुंचने से पहले हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। ये कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और हो भी वो इस बच्चे के खैर ख्वाह। बस हमने इसकी माँ की तरफ वापस पहुँचा दिया ताकि इसकी आंखें ठंडी रहें और अजुर्दा खातिर ना हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये था जी मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन। सैड स्टोरी, दुखी कहानी, पर नहीं को है में बदलिए। आज के दौर में किसी बच्चे के साथ ऐसे हालात हो जो मूसा के थे, और साथ साथ रिलेट करिएगा नबी सल्लम से। मूसा के माँ बाप थे लेकिन अल्लाह ने उनसे दूर किया, नबी सल्लम के तो बाप थे ही नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की तरफ वापस लौटाए गए हैं, नबी सल्लम हलीमा सादिया की तरफ लौटाए गए। ये मुमासलतें हैं। बनी इसराइल की बहुत बड़ी आजमाइश का तस्करा इन आयतों में। फिरौन बेटों को ज़िबा करता था, लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। ज़रा से इस पे सोचिए, कल तो फिरौन ने ये किया कि फिरौन के दौर में आजमाइश बनी इसराइल की थी बेटों का कत्ल और बेटियों का जिंदा रहना। आज के दौर के मुसलमानों की आजमाइश क्या है, खुद ही सोचिएगा, कई रंग है उसके। दूसरी बात इसमें देखिए, उम्मे मूसा का इम्तिहान। फिरौन ने जब ख्वाब के ज़रिए या कोई और वजह होगी, मारूफ बात तो ख्वाब ही है, 1 साल के बच्चों के कत्ल और दूसरों को रखने का हुक्म दे दिया, तो मूसा उसी साल में पैदा हुए जिस साल बच्चे कत्ल किए जाते थे। हारून अलैहिस्सलाम उससे 1 साल पहले पैदा हो चुके थे जो बड़े थे, और उस साल फिरौन कत्ल नहीं कराता था। हर साल के बच्चों को क्यों नहीं कत्ल कराता था? इसलिए कि फिर नस्लें ख़त्म हो जाती तो बेगार किन से लेता, और फिर वही हुआ जिसका डर था। अल्लाह ने मूसा की माँ के दिल में ख्याल डाला। कोई कहता है ख्वाब दिखाया कि बच्चे को दूध पिलाती रहना, और कभी तुझे अगर पुलिस के आने की खबर हो ना तो इसको जल्दी से एक बॉक्स में डालकर दरिया में डाल के रस्सी बांध देना। माँ जल्दी में रस्सी बांधना भूल गई, जो मारूफ कहानी है। बच्चे को छुपाना चाहा, सिपाहियों के खौफ से संदूक को दरिया में डाल दिया, और ये था इम्तिहान मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का। आज आप में से जितनी भी माएँ हैं, जब कभी आपके अपने बच्चे छोटे थे या अगर अभी भी हैं, तो महसूस तो कीजिए, अपने ही जिगर के टुकड़े यानी उससे बड़े बच्चे से माँ बेनियाज हो जाती है। कोई नानी पालती है या दादी पालती है या पप्पी को दे देते हैं कि अभी छोटे के साथ मसरूफ़ है माँ। कितना बड़ा इम्तिहान था, लेकिन इनाम क्या है? बच्चा वापस आया, फिरौन के महल में मूसा गए, रो रो के आसमान सर पे उठा दिया। एक औरत पेश की जा रही, दूसरी, मूसा दूध ही नहीं पी रहे, हालांकि भूखे बच्चे को दूध चाहिए होता है, किसी औरत का भी पी लेता। मूसा ने पैदा होते ही रोज़ा रख लिया। मूसा का क्या कहना कि उनकी तो आजमाइशें बचपन से शुरू हो गई, तभी तो अल्लाह के अंदाज़ों पे पूरे आए थे। फतन्ना का फतूना की एक किस्म थी। और फिर उसके बाद फिरौन को इतनी समझ नहीं आई, को डब्बे का दूध पिला देता, फार्मूला मिल्क नहीं समझ आई। अब औरतें लाई जा रही एक से एक, एक से कोई भी नहीं। और फिर वो बहन का किरदार, कुस्सी। इस बारे में आपको मूसा के ऊपर 4 औरतों का एहसान दिखेगा, माँ का, अभी बहन का, फिर फिरौन की बीवी आसिया का, और आगे जाकर शुएब की बेटी का। इसको कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन मैं हूँ। हम तो अपने बारे में यही मियाँ को कहते ना, ये मेरी वजह से सब हुआ है, रिस्क औरत के नसीब से मिलता, या आप कितनी अच्छी सेहत मेरी वजह से हुई है, पहले आप क्या थे कांगड़ी से जब शादी हुई थी, आपको तो बात भी नहीं करनी आती थी, बातें तो मैंने सिखाई हैं। यानी औरतों का बस नहीं चलता अपने मर्दों को, बेचारों को दबा दबा के दबाई दें। वो एक बीवी थी, अपने मियाँ से कहती है आप मेरी बात नहीं मानते। उसने कहा बेगम मैं आपकी बात तो मानता हूँ, पर एक प्रॉब्लम है, आपका ये ख्याल है कि मैं आपकी हर बात मानूं, तो वो मैं नहीं कर सकता। जान छुड़ा ली इस बात से। हालांकि नबी ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल उम्मे मूसा की है, अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और उजरत भी पाए। जब मूसा ने दूध पी लिया तो अब मूसा की माँ फिरौन की मजबूरी बन गई। अल्लाह करे आज के मुसलमान इस बात को समझें। वो इन्वेंशंस कीजिए ये माल के नाम पे, इन्वेंशंस के नाम पे, रिसर्च के नाम पे, तहकीकात के नाम पे काम कीजिए। आईफोन आप बनाएं, उन्होंने आई बनाए, आप सी फोन बना लें, आप डी फोन बना लें, आप जेड फोन बना लें, कुछ करें। तो आज का थीम है ना, इसमें गौर से आप देखेंगे ना कि जब से माल को डिस्करेज किया गया, कंडेम किया गया तो मुसलमान सुस्त हो गए। क्या करना है इस दुनिया में, कुछ बना के मर तो जाना ही है। क्या करनी है, स्ट्रॉबेरियां लेके आनी है, इतनी महंगी है, जन्नत में खाएंगे। सुस्त हो गए हम। दुनिया ख़त्म ही हो जानी है तो क्या ज़रूरत है नासा का एक इतना बड़ा प्लांट लगाने की। हमने तरक्की रोक दी तो दुनिया तो नहीं रुकी। हम हटे, किसी और ने हमारी जगह ले ली। सुई से सिलाई से लेके जहाज तक गैर मुस्लिम बना रहा है। सारी इन्वेंशंस गैर मुस्लिम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, एप्स, नेट, मीडिया, ये ABCD, मेटा से लेके छोटी बड़ी चीज़ों को किसका बना हुआ है। और हम क्या बना रहे हैं, जूतियाँ और बरस, पकौड़े और समोसे। हम टेस्ट कॉन्शियस हो गए, हम जाहिर चीज़ों पे आ गए। हमारी थीम मैरिजेज हैं। ऐसी शादी तो शायद लेडी डियाना और चार्ल्स की भी ना हुई होती जो आज होती है हमारी। जो जोड़े हमारी दुल्हनें पहनती हैं और आंखें फूट नहीं जाती होंगी, वो जोड़ा बनाने बनाने में हैंडमेड होते हैं जोड़े। एलिजबेथ कहाँ अपनी बहू का जोड़ा लेकर गई होंगी जो आप लेके जाएंगी अपनी बहू का। कभी सोचा करें हमारा टैलेंट कहाँ लग रहा है। और जो लोग ये बनाते हैं उनको कौड़ियों की कीमत और बाकी सारा ऊपर वाले ले जाते हैं। तो पता क्या चला कि जब आजमाइशों में ला डालता है तो बचाता है। जब माँ ने देखा ना कि अब तो मेरी मर्जी चलनी है, कहने लगा है औरत तू मेरे महल में ही आ जा। कहने कि मैं क्यों आऊँ, मेरे बच्चे हैं। और कहा चो उनको भी ले आओ। कहा नहीं, कहता है तो मैं इस बच्चे को ले जाती हूँ अपने घर। अच्छा ले जा। तो अल्लाह के नबी की तरह मूसा भी एक दूसरी औरत को दिए गए। फ़र्क कितना है कि नबी तो रज़ाई माँ के पास गए और मूसा अपनी सगी माँ के पास गए। ये है अल्लाह का वादा। अल्लाह ही आप एक दफ़ा अल्लाह से राज़ी तो हो जाए। आज की माँ बेबी सिटिंग में नहीं भेजती बच्चे को, कहती नहीं मेरी गोद में रहेगा, कुछ नहीं करता ये, मेरा बच्चा नहीं बोलता, और वो दरिया में डाल दिया। तो ज़रा सोचिए कि अगर आप उम्मे मूसा की जगह होती तो क्या आप करती हैं सब। हम तो पहले इंश्योरेंस लेते, कुछ हो तो नहीं जाएगा मूसा को, डूब गए तो क्या होगा, मगरमच्छ खा गया तो क्या होगा, और ABCDC। तवक्कुल ही नहीं है। माल के साथ दिल तंग होता है और बंदा क्या कहता है, हाय कुछ हो गया, अच्छा ये भी इंश्योरेंस ले लो। आप एक जहाज़ का टिकट बुक करा के तो देखे जाके ऑनलाइन, वो टिकट तो आपको दे देंगे $500 का, लेकिन ABCD करके नीचे इतनी ऑप्शन देंगे, अच्छा अगर आपको ये हो गया, अच्छा आपका सामान गुम गया तो ये इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, एंड पे 800-900 की टिकट बनी होगी आपकी। क्यों? इसलिए कि आपको डर है कि कुछ हो ना जाए। हज़रत मूसा की माँ ने अल्लाह से ऐसे कोई वादे नहीं मांगे, नो इफ्स एंड बट्स। आगे चलिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम का अपने रब से मजबूत ताल्लुक आपको दिखा आयत 7 से 12 में। नंबर लिखे हुए आयतों के आप देख लीजिएगा। जब जान को खतरा लाहक हुआ तो अल्लाह को पुकारा, रब्बी नजिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। जब फरार की राह ली तो सिर्फ अल्लाह को पुकारा आयत 22, असा रब्बी अन यहदियनी सवा सबील। जब यारो मददगार गैर मुल्क यानी मदियन में पहुंचे तो सिर्फ अल्लाह को पुकारा, रब्बी नी लिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये पढ़ते हैं अपने आगे रखते हुए इन चीज़ों को और अपने ईमान का मुहासबा करते हैं। अपने लिए अमल के नुक्ते, ये सारी बातें जो अभी तक की हैं इसको भी अपनाना है, ईमान लाना है, सरकशी और फसाद नहीं करना, अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह के वादे को सच्चा जानना है, रिश्तेदारों के हकूक अदा करनी है और ख़ताकार नहीं होना, और उम्मे मूसा के किरदार से नसीहत लेनी है और हज़रत मूसा की तरह बात बात पे अल्लाह का दर खटखटाना है। आगे जी रुकू नंबर 5 आयत नंबर 14 से 21, 14 to 21। माफ़ी मांग लेना मोमिन का शुआर है। वलम्मा बलगा शुद्दहू वस्तवा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरी तरह तवाना हो गए तो हमने इनको हिकमत व इल्म अता किया, और नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त शहर में आए जबकि शहर के लोग गफलत में थे। यहाँ दो शख्सों को लड़ते हुए पाया, ये एक तो इसके रफीकों में से था और दूसरा इसके दुश्मनों में से। उसकी कौम वाले ने इसके खिलाफ जो इसके दुश्मनों में से था उससे फरियाद की, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके मुक्का मारा जिससे वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये तो शैतानी काम है, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला है। फिर दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है, बस तू मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया, वो बख्शिश वाला और बड़ी मेहरबानी वाला है। कहने लगे, मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर ये करम फरमाया, मैं भी अब हरगिज़ किसी गुनाहगार का मददगार न बनूंगा। सुबह ही सुबह डरते डरते अंदेशे की हालत में खबरें लेने शहर में गए कि अचानक वही शख्स जिसने कल उनसे मदद तलब की तीन से फरियाद कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि इसमें शक नहीं कि तू तो सरीख बेरा है, यानी तेरा तो काम ही लड़ना झगड़ना, कल किसी और से लड़ रहा था, आज किसी और से। फिर जब अपने और इसके दुश्मन को पकड़ना चाहा, वो फरियादी कहने लगा कि ऐ मूसा, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया, मुझे भी मार डालना चाहता है? तू तो मुल्क में जालिम और सरकश होना चाहता है, और तेरा इरादा ही नहीं कि मिलाप करने वालों में से हो जाए। शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ऐ मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा दे रहे हैं, बस तू जल्दी चला जा, मुझे अपना खैर ख्वाह मान। बस मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से खौफजदा होकर देखते भालते निकल खड़े हुए, कहने लगे, ऐ परवरदिगार, मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी का ये मंजर था। आपके मेरे लिए अमल की बात, नेक बनना है, अपनी जान पे जुल्म नहीं करना, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करनी है, इसलाह करने का इरादा करना है, सरकश बन के नहीं रहना और मुजरिमों का मददगार नहीं बनना, और किसी की मदद करने से पहले देख लेना है कि क्या ये हक पे है भी कि नहीं। रुकू नंबर 6, आयत 22 से 28। दुआ बंदा मोमिन का हथियार। वलम्मा तवज्जह तिल्का अमदयन, और जब मदियन की तरफ मुतवज्जे हुए तो कहने लगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले चलेगा। और मदियन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है, और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती दिखाई दी। पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस न लौट जाए, हम पानी नहीं पिलाती, और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। बस आपने खुद इन जानवरों को पानी पिला दिया और फिर साय की तरफ हट आए और कहने लगे, ऐ परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे, मैं इसका मोहताज हूँ। इन्नी लिमान जलता इलैय मिन खैरिन फकीर। इतने में इन दोनों औरतों में से एक इनकी तरफ शर्मो हया से चलती हुई आई, कहने लगी कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है इसकी उजरत दें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास पहुंचे और इनसे अपना सारा हाल बयान किया तो वो कहने लगे, अब ना डर, तूने जालिम कौम से निजात पाई। इन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जी, आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें इनमें से सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और अमानतदार हो। इन बुजुर्गों ने कहा, मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ इस मेहर पर कि आप 8 साल तक मेरा काम काज करें। हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान के हैं। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्क़त में डाल दूँ। अल्लाह को मंजूर है तो आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खैर, तो ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे चाहूँ मुझ पर कोई ज्यादती न हो। हम जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह ताला गवाह और कारसाज़ है। यहाँ से आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। तफसीर इब्ने कसीर में रिवायत आती है, आयत 24 पे उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि इस कुएं के मुंह को इन चरवाहों ने एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया था, जिस चट्टान को दो आदमी मिलकर सिरका सकते थे। आप अलैहिस्सलाम ने तन तन्हा इस पत्थर को हटा दिया और एक डोल निकाला था जिसमें अल्लाह ने बरकत दी और इन दोनों लड़कियों की बकरियां शिकम शेर हो गईं। इसलिए उन्होंने कहा था कि यह अमानतदार भी हैं और कवि भी हैं। दूसरी बात, आप देखिए कि उस औरत ने जब मूसा को अपने घर लेकर जाना था तो अल्लाह ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए? तमशी, चलती थी हया के साथ। इससे आपको शर्मो हया की अहमियत समझ आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर दीन का एक मिजाज होता है और इस्लाम का मिजाज हया है। हज़रत अनस और इब्ने अब्बास से भी यही रिवायत है। और हज़रत उमर फरमाया करते थे कि वो औरत कैसे चली कि मूसा से कहा कि आप आगे रहे, यानी मूसा ने कहा कि अगर तुम आगे चलोगी तो मुझे तुम्हारा जिस्म दिखेगा, तो क्या करो, पीछे रहो और हाथ में कंकरियां ले लो, जिधर मुड़ना होगा ना उस तरफ कंकरी फेंकती जाना, मैं उधर मुड़ता जाऊंगा। ये नेविगेटर था मूसा का मदियन जाते हुए। शर्मो हया औरत और मर्द दोनों के लिए अच्छी है। फिर जो एक हदीस आपने पीछे भी सुनी थी, बात सूरह यूसुफ में تیسری وہ عورت جس کو اللہ کے نبی نے صاحب فراست کہا، اس کی روایت آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے، دیکھ لیجئے گا، ابن مسعود سے یہ روایت ہے کہ تین لوگ زیرک تھے، جینیس تھے، معاملہ فہم تھے، دانائی تھی، دوربینی تھی، ایک ابو بکر، ایک عزیز مصر، اور تیسری وہ صاحبزادی جس نے موسیٰ کے بارے میں اپنے باپ سے سفارش کی تھی. روٹی کپڑا اور مکان تینوں مل گیا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کو چھوڑے ہی نہ. سارے جو فقیر بیٹھے ہیں نا، ان کو جا کر دعائیں یاد کرا دیں، کچی بستیوں والوں کو جا کر عقیدے کی گہرائیاں سنا دیں. بلیو می، یہ حالات جو اس وقت ہمارے ارد گرد کے نا، یہ نہیں 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 کہنے کے، میں نہیں، ہے نہیں، نہیں ہے، آئی جو ڈونٹ نو بات میں حقیقت ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک لڑکی کی شادی ہوئی، بہت پیسے والے، گاڑی بھی بڑی، سب کچھ اے بی سی ڈی سی، دو تین ماہ رہی اور ایک دم اچانک میکے آ گئی اور کہا میں اب ادھر نہیں جاؤں گی، ہوا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی ہوں، پیسہ بہت ہے ان کے پاس، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کرتے کیا، پوچھنے پہ ٹال دیتے تھے، ماں باپ نے بھی نہیں پوچھا ہوگا ان کی گاڑی کا نمبر دیکھ کے اور نیم پلیٹ دیکھ کے. کہتی میں ایک چیز دیکھتی تھی کہ دن کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ یہ گھر میں نیچے جاتے ہیں تہہ خانے میں اور ادھر سے کہیں چلے جاتے ہیں، میں نے کبھی جاتا نہیں دیکھا. ایک دن میں نے سوچا کہ میں بھی تو دیکھوں ادھر کیا ہے، اور جب وہ گھر کے نیچے گئی نا تو ادھر پرانے کپڑے، کشکول اور ایسی چیزیں، نئے صاف ستھرے کپڑے اتار کر وہاں سے پرانے بھکاریوں والے کپڑے پہن کے کسی چور دروازے سے جاتے تھے، وہ بھکاریوں کا خاندان تھا. اس نے کہا مجھے ادھر نہیں رہنا. تو نہیں کو ہے میں بدلیے، اور اس کے لیے عسر میں یسر ڈھونڈیے. صحابہ کرام نے کبھی بھی اتنی غربت کا رونا نہیں رویا تھا جو ہم روتے ہیں. سب سے اچھا کھاتے ہیں، سب سے اچھا پہنتے ہیں، اور روتے بھی اتنے زیادہ ہیں. اللہ ہماری امت کی اصلاح کر دے. عمل کے نقطے، رضا الہی کو پانے والے، اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگنی ہے، بے لوس مدد کرنی ہے، رب سے خیر کی دعائیں کرنی ہے، اللہ کو گواہ بنانا ہے، امانت دار ہونا ہے، مسلمان بھائی کی ہمت بندھانی ہے. آگے جی، رکوع نمبر 7، 29 سے 42. نبوت مجمع میں نہیں، تنہائی میں دی جاتی ہے. اس جملے کو لکھیں. آج تو نبوت کا دروازہ بند ہے، تو پھر آج کیا ملے گا آپ کو؟ دین کی خدمت. آپ چاہتے ہیں آپ دائی دین بنیں، آپ انصار اللہ بنیں، تو پھر آپ کو اپنی تنہائیوں کو اللہ سے جوڑنا پڑے گا. فلما قضى موسى الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے چلے، تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو. بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار. اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے. پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھیلا رہی ہے، تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا. ہم نے کہا موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گرے باند میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی ایسے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لے. بس یہ دونوں موجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، اور فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا. دیکھیے کتنی کلیئرٹی کے ساتھ اپنا جرم مان رہے ہیں. اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے. کتنی کلیئر بات ہے. ہاں میرے پاس نہیں ہے لیکن ان کے پاس ہے، تو خوش تھے، روتے تو نہیں رہے. ہم ایک محرومی کو لے کر ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. میرے ساتھ ایسا کیا، سر میں درد ہی رہے، مائیگرین 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 مائیگرین، ایک گھٹنے میں درد ہے، دوسرا ٹھیک ہے، گھٹنوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گھٹنوں کا درد، چار چھ بچوں میں سے ایک بیچارہ ذرا کمزور ہے، بس اسی کے پیچھے رو رہے ہیں، تو رو رہے ہیں، تو رو رہے ہیں. تو آج آپ نے لیڈرشپ کی کوالٹیز پانے والی خوبی سیکھی ہے، नहीं को है में बदलना है। आज तो आपके मियाँ बड़े खुश होंगे, अब नया चीज़ में कहते जी है, सब कुछ है, कुछ चाहिए नहीं, कहते आपको क्या हुआ, कल आपको खुद छोड़ने आएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, बताइएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार, मैंने इनका एक आदमी कत्ल कर दिया था, अब मुझे अंदेशा है कि वो मुझे भी कत्ल कर डालेंगे, और मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम मुझसे बहुत ज़्यादा फसीह ज़ुबान वाला है, तो इसे मेरा मददगार बना दे, रिद्दा साथ बना दे मेरे जोड़ने वाला, और मददगार बनाकर मेरे साथ भेज के मुझे सच्चा माने, मुझे तो खौफ है कि वो सब मुझे झुठला देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तेरे भाई के साथ तेरा बाजू मजबूत कर देंगे। नोट करिएगा, एक अकेला, 2 11, और भाई भाई का बाजू ही बने तो मज़ा आता है, मुकाबिल नहीं बनना चाहिए, और तुम दोनों को गलबा देंगे, फिरौनी तुम तक पहुंच ही ना सकेंगे, बस सब हमारी निशानियों के तुम दोनों और तुम्हारी ताबेदारी करने वाले ही गालिब रहेंगे। बस जब इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दिए हुए खुले मौजज़े लेकर पहुँचे, तो वो कहने लगे, ये तो सिर्फ घड़ा घड़ाया हुआ जादू है, हमने अपने अगले बाप दादों के ज़माने में कभी नहीं ये सुना। हज़रत मूसा कहने लगे, मेरा रब ताला खूब जानता है जो इसके पास की हिदायत लेकर आता है और जिसके लिए आखरत का अच्छा इंजाम होता है, यकीनन बेइंसाफों का भला न होगा। फिरौन कहने लगा, ऐ दरबारियो, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता, यानी खुद को खुदा समझता था, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता, सुन ऐ हामान, तू मेरे लिए मट्टी को आग से पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तामीर कर, तो मैं मूसा के माबूद को झांक लूँ, इसे मैं तो झूठों ही में से गुमान करता हूँ। इसने इसके लश्करों ने नाहक तरीके पर मुल्क में तकब्बुर किया और समझ लिया कि वो हमारी जानिब लौटाए ही ना जाएंगे, बिलाहर हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया बुर्द कर दिया, यानी डबो दिया। अब देख ले कि इन गुनाहगारों का अंजाम कैसा हुआ, और हमने इन्हें ऐसे इमाम बना दिए कि लोगों को जहन्नुम की तरफ बुलाएं। नोट करिएगा, हर लीडर खैर की तरफ नहीं लेके जा रहा होता, और रोज़े क़्यामत मुतलक यानी बिल्कुल भी मदद ना किए जाएंगे, और हमने इस दुनिया में भी इनके पीछे अपनी लानत लगा दी, और क़्यामत के दिन भी वो बदहाल लोगों में से होंगे। वो कहते ना कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो इस हिस्से में आयत 34 में मूसा अलैहिस्सलाम की अपने भाई से मोहब्बत दिखी, अल्लाह के दिए हुए मिशन में अपने भाई का साथ मांगा। आइए हम भी यहाँ दुआ करें, अल्लाह हमारे भाइयों को इस मिशन में हमारे साथ लगा दें, हमारी बहनों को इसमें हमारे साथ लगा दें, क्योंकि घर से हिमायत मिल जाए तो बंदा बड़ा शेर हो जाता है, और अल्लाह हमारे शोहरों को इस मिशन में हमारे साथी बना दे, हमारे बेटों को इस मिशन में हमारा साथी बना दे, हमारे पोतों नवासों को रास्ते में जिनके जो भी हैं उनके लिए दुआएं चुपके से मांग लीजिए, यही हल है। आप पीछे नहीं अब जाएंगे, वो आगे आएंगे इंशाल्लाह, नहीं में हैं। कैसे हैं आपके घर वाले? देखा ये एकदम ही अच्छे हो गए माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कुरान पढ़ते हुए मजाक, कुरान पढ़ते हुए हंसना, नहीं रोएं बैठ के आप, और आयत पता कौन सी देते हैं? सूरह तौबा की, फल जब को कसीर, बहुत रोया करो अपने उन करतूतों पे और हंसा कम करो। ये हैं वो चीज़ें जिसने आज माल से, हंसने से, खुश होने से लोगों को एलर्जी कर दिया। क्या बुरी बात है? आप कहते अल्लाह के नबी कितने फिल बदी थे, आपकी मुस्कुराहटों के नाम पे किताब तो पढ़िए। एक औरत आ रही है और आपको कह रही है अल्लाह के नबी मैं जन्नत में जाऊंगी, का नहीं बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएंगी, वो रोने लगी रोने लगी रोने लगी, कहा अल्लाह की बंदी तू जवान होके जाएगी, क्या साहबा नहीं हंसे होंगे, किसी साहबी नहीं बात सुनाई है ना। और एक शख्स आया और कहने लगा कि अल्लाह के नबी मुझे क्या देंगे, कहा तुझे ऊँट दूंगा, कहा अच्छा फुला दिन आना आया, तो कहा आज तो मैं तुझे ऊँट का बच्चा दूंगा, वो कहा क्यों मैं बच्चा क्यों लूँ, मैं तो ऊँट लूँगा, मुझे आपने कहा था ऊँट देंगे अब बच्चा दे रहे हैं, कहा अल्लाह के बंदे हर ऊँट ऊँट का बच्चा नहीं होता। और एक मौके पर अल्लाह के नबी बैठे हैं और हज़रत अली भी और कुछ और साहबी भी हैं, तो खजूरें खा रहे हैं, लोगों को मजाक सूझ गया, खजूर खाते तो उसकी गुठली जो थी वो हज़रत अली के आगे रख देते, आपने खाई उधर रख दी, मैंने खाई उधर रख दी, एंड पे हुआ क्या कि हज़रत अली के आगे गुठलियों का ढेर है और बाकी साफ सुथरे, कुछ किया ही नहीं। बाद में मजाक हुआ, हज़रत अली के ऊपर बात आई, आपने कहा आज तो सारी खजूरें अली खा गए रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा अब क्या हुआ, हज़रत अली का जवाब सुना आपने, कहा जी अल्लाह के नबी मैंने तो गुठलियाँ छोड़ दी, बाकी लोग तो गुठलियों समेत खा गए। अरे आप हंस पड़े, दीन की महफिल है, कुरान की महफिल है। ये है वो सुतेलापन जो दीन के नाम पे। चुप, गुस्सा, डंडा, हेफ्स डंडे के बगैर नहीं होना। मौलवी साहब अगर हंसेंगे तो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे। मारो पहले इनको, दुबक के बैठेंगे फिर सबक मिलना है। गलत है ये। हमारा दीन बहुत प्यारा है, इसमें उसर के साथ यूसर और यूसर के साथ उसर है। तो रिलैक्स होके नॉर्मल मोड में पढ़ा कर। हम बात कर रहे होते हैं, टोन भी सीधी है, नॉर्मल बात। और जो ही दीन की बात करें, और माशाल्लाह जिन दिनों में तजवीद सीख रहे होते हैं ना, तो फिर गुन्नों के साथ सलाम करते हैं, और सलाम अलैकुम की स्टोन, क्योंकि तजवीद जो ठीक हो रही है। अच्छा किसी से कहें ना शेयरिंग करें, तो कहती है नहमदुहु व नुसल्ली अला रब्बि श्राह ली सदरी सलाम अलैकुम। गलत है, बी नेचुरल। आपको देख के लगना नहीं चाहिए कि आप कोई दीनदार बंदा है, फिर आप पुराने दीनदार हैं, क्योंकि नया कपड़ा बड़ा अकड़ा होता है। पुराना कपड़ा दो दो के इस्तेमाल शुदा बड़ा मज़े का होता है, वो तो देने को ही ना दिल जाए किसी को। तो ये जो दीन के साथ एक आर्टिफिशियलनेस है ना, इसने भी लोगों को ऑफेंड किया। ये हमारे इस मौजू से मिल रही है, इसीलिए फिर आप देखिए एक मिस्टर और एक मुल्ला। मिस्टर मुल्ला को बुरा कहते हैं, हालांकि गुजारा उनका भी नहीं, निकाह भी उन्होंने पढ़ाना और जनाजा भी उन्होंने पढ़ाना और बच्चे के कान में अजान भी उन्होंने देनी। और मौलवी साहब का कहाँ गुजारा है मिस्टर्स के बगैर? इतने बड़े बड़े बिल कौन देगा आपके? तो लिहाजा ज़रूरत है इन दोनों में शेक हैंड करा दें। मुझे तो सहाबा कराम और अल्लाह के नबी ऐसे ही दिखे। अल्लाह नोज़ दी बेस्ट। आगे देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की खूबी के बारे में अल्लाह को बताया, इससे पता चलता है कि आपका दिल खुला था और खूबियाँ जानते थे। आपको भी अपने भाई बहनों का टैलेंट पता होना चाहिए, जाके आज उनको फ़ोन करके बोले भाई आप में ये बड़ी खूबी है, आप अगर ये काम करें तो इसे बड़ा अच्छा करेंगे। देखिए हाँ कैसे खुश होते हैं। उनके जान माल वको दीन पे लगवाइए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत अता कर दी। अल्लाह हमें भी अपने भाइयों से मोहब्बत करने वाला बनाए। करेंगे आज भाइयों को फ़ोन मैसेज जाके कहेंगे। चलिए आगे देखिए आए 30 से 35 में अल्लाह ताला का मूसा पर क्या क्या इनामात थे। कोहे तूर पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, दो मौजज़े अता किए, खौफ पर काबू पाने के तरीके बताए। यानी उलमाज भी कहते हैं कि बहुत दिल धड़क रहा हो ना, खौफ है, तो अपना ये हाथ है ना सीधा, तो इसको दिल पे लेफ्ट साइड। तो वैसे भी आप साइंटिफिकली भी देखिए ना, आप दिल को हल्का से ऐसे काबू में रखेंगे ना तो होगा। जैसे बच्चे को ज़रा सीने से लगाएं तो उसको सुकून मिलता है, तो ये तरीका अल्लाह ने उनको सिखाया। और भाई हारून की मुआवनत अता फरमाई, ये एहसानात है आपके मेरे लिए। अमल के नुक्ते, वफादार और ज़िम्मेदार शोहर बनना, अल्लाह के सिवा किसी से खौफ नहीं खाना, फरमाबरदार होना, हक परस्तों को सच्चा समझना, रसूल की पैरवी करनी है, गुज़श्ता गुनाहों पर नादिम होना है। अल्लाह में तौफीक दे।